Doar Shripad Madhavacharya Tirubhav Tithi hai. Isko palaksha mein hum unke jivan charitra par charcha karenge. Aur Shri Narottam Das Thakur rachit sab parshad vilap jo geet hai usko dohrayenge. Je anilo premadana karuna prachu. Je anilo premadana karuna prachu. Eno Prabhupada, श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की श्रीपाद मध्वाचार्य तिरुभावतिथि महामहोत्सव की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण। तो आज बहुत ही विशेष दिन है। आज और कल दोनों दिन जो चतुर संप्रदाय हैं, प्रमुख जो संप्रदाय हैं जिनके द्वारा व्यक्ति भगवान कृष्ण को जान सकता है, समझ सकता है या भगवान के चरण कर्ण कमलों की प्राप्ति कर सकता है, ऐसे दो महान आचार्य, एक है श्रीपाद मध्वाचार्य और दूसरे श्रीपाद रामानुजाचार्य। तो आज श्रीपाद मध्वाचार्य का तिरुभाव है और कल श्रीपाद रामानुजाचार्य का तिरुभाव है। बल्कि ये जो चार संप्रदाय के आचार्य हैं, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, ये सारे आचार्य आचार्यों का प्राकट्य दक्षिण भारत में हुआ था। द्रविड़ देश, दक्षिण भारत का दूसरा नाम है द्रविड़ देश, या जहां भगवान के जो भक्त हैं उनका प्राकट्य हुआ है अधिक मात्रा में। तो मध्वाचार्य हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य हैं। मध्वाचार्य ही नहीं बल्कि जो भी आचार्य हैं उनका आश्रय ग्रहण करना हर एक भक्त के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन मध्वाचार्य क्यों? क्योंकि मध्वाचार्य के संप्रदाय में हम आते हैं। हमारा परिचय क्या है? हमारा परिचय है कि ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो कोई भी व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ता है, यदि उसे पूछते हैं आप कहां से बिलोंग करते हो, है कि नहीं, भौतिक जगत में कहते कौन से ऑफिस में काम करते हो, कहां नौकरी करते हो, कौन से स्थान से हो, तो उसी प्रकार से हम भगवत भक्ति का पालन कर रहे हैं, भगवत सेवा में जुड़े हैं, तो हमें पूछा जाता है। अलग अलग साधुओं से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो कहते कौन सा संप्रदाय है आपका, कौन सी शाखा में हो, तो हम क्या उनको बताते हैं? ब्रह्मा मध्वा गौड़ीय संप्रदाय। जो भगवान ने विशेष रूप से कलियुगा में ये जो चार संप्रदाय अवतरित, चार संप्रदाय होंगे, ब्रह्मा संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कौन से हैं, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, तो भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम इस संप्रदाय के जो प्रमुख आचार्य हैं उनको ये शिक्षा प्रदान की, ब्रह्मा जी को, शिव जी को, कुमार और लक्ष्मी को। और फिर उन प्रमुख आचार्यों ने आगे चलकर इसी शिक्षा को पहुंचाया। तो ब्रह्मा जी के बाद कौन आते हैं? नारद है, आजकल हम नारद और ब्रह्मा का चर्चा सुनते हैं, यही है वो चर्चा। चतुर्श्लोक भागवत आएगा आगे चलकर। तो फिर नारद आगे व्यासदेव को देते हैं और व्यासदेव से आगे मध्वाचार्य को ये जो शिक्षा है प्राप्त होती है। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस संप्रदाय को विशेष रूप से स्वीकार किया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए, और जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए तो महाप्रभु ने मध्वाचार्य के जो फॉलोअर्स थे उनको भी हरा दिया। मध्वाचार्य के फॉलोअर्स को तत्ववादी कहा जाता है, हमारे संप्रदाय के हैं, लेकिन उनका गोल क्या है, वैकुंठ मुक्ति ऐश्वर्य भाव से भगवत सेवा करना। लेकिन उसी संप्रदाय में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख पार्षद श्रीपाद माधवेंद्र पुरी का अवतरण होता है, और माधवेंद्र पुरी से इस संप्रदाय में माधुर्य भावना का, माधुर्य भाव से भगवत सेवा की प्रमुखता स्थापित हो जाती है। उससे पहले इस संप्रदाय में कृष्ण की सेवा हो रही है, लेकिन किस भाव से, बाकी चारी भाव, जो बाकी जो भाव है विशेष रूप से वात्सल्य, वात्सल्य की प्रमुखता है मध्वाचार्य के संप्रदाय में, या दाश की प्रमुखता है। तो चैतन्य महाप्रभु जब वहां पहुंचे उन्होंने कहा कि हमारा भजन करना या साधन करने का उद्देश्य या साध्य मुक्ति नहीं है। चार प्रकार की मुक्तियां, वैसे कितने प्रकार की मुक्तियां हैं, पांच प्रकार की है, सालोक्य सारष्टि साम्यक्य सायुज्य ऐसे कुछ। तो ये मुक्ति, मुक्तियां प्राप्त करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा प्रयोजन क्या है, प्रेम प्रयोजन, प्रयोजन मीन्स गोल, साध्य है भगवान का निष्कपट आहेतु की प्रेम जो हमें प्राप्त करना, वह हमारा उद्देश्य है। तो फिर महाप्रभु ने उनके साथ चर्चा की तो महाप्रभु ने कहा इस प्रेम प्रयोजन का जो सार है वह श्रवणम कीर्तनम नवदा भक्ति, जो श्रवणम कीर्तन है यह प्रमुख साधन है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने का। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा मुख्य पथे जीव पाए कृष्ण प्रेम धन, मुख्य पथ, मुख्य पथ क्या है, श्रवण कीर्तन जले करे सेचन। क्योंकि कोई जीव इस ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहा है तो उसे गुरु और कृष्ण की कृपा के द्वारा भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है, और भक्ति लता का बीज गुरु दीक्षा देते तो क्या देते हैं, श्रद्धा देते हैं, फेथ। हाँ, बीज का मतलब है फेथ, गुरु क्या कहते हैं उस शिष्य को, फेथ देते वो बीज है। तो फिर वो बीज मिलने के बाद उस शिष्य का ये नहीं है कि वो उद्धार हो जाएगा, नहीं, शिष्य का कर्तव्य है उसके बाद शिष्य को नियमित रूप से गुरु के आदेशों का पालन करते हुए अपने आप को भगवत सेवा में नियुक्त करना चाहिए, और विशेष रूप से श्रवणम कीर्तनम जले करय सेचन। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को कहा कि जैसे ये बीज प्राप्त हो जाता है तो उसको अंकुरित करने के लिए व्यक्ति को निरंतर श्रवण कीर्तन रूपी पानी डालते रहना चाहिए, उससे वो बीज बढ़ेगा और इस बीज की रक्षा भी करनी चाहिए अनवांटेड पौधों से। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित किया है कि जीव का असली प्रयोजन प्रेम है, और वो प्रेम की प्राप्ति तभी संभव है व्यक्ति जब अपने आप को श्रवण और कीर्तन के कार्य में मग्न करता है। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने वहां उनके विग्रह का दर्शन किया मध्वाचार्य के, चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज उस विग्रह का वर्णन करते हुए कहते हैं मध्वाचार्य स्थाने आयला जहा तत्ववादी उड़ुपिते कृष्ण देखी तहा आयला प्रेमोन्मादी। कि चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत में लगभग 4 साल भ्रमण किया, इतनी लंबी यात्रा, और जब चैतन्य महाप्रभु ने भ्रमण किया तो वहां अलग अलग विग्रहों का उन्होंने दर्शन किया, अलग अलग विग्रहों की स्तुति की, और उनमें से एक विग्रह थे मध्वाचार्य के कृष्ण, उनका नाम क्या है, उडुपी कृष्ण, जिनको गोपाल कहा जाता है। वो कैसे है, उन्होंने वो खड़ी मुद्रा में है और उन्होंने अपने हाथ में एक डंडा पकड़ा हुआ है, रस्सी है उनके पास, गोचारण के लिए निकले हैं बाल गोपाल, ये जो उनका स्वरूप है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस विग्रह का दर्शन किया और कृष्ण को देखने मात्र से प्रेम में वो पागल हो उठे। और वास्तव में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने से पहले ही मध्वाचार्य, क्योंकि मध्वाचार्य का प्राकट्य कब हुआ था, 1238 में, और चैतन्य महाप्रभु लगभग 1500 समथिंग में आए थे ना, नहीं उससे भी पहले, बहुत साल पहले। मध्वाचार्य जब नवदीप में आए थे तो चैतन्य महाप्रभु, जब मध्वाचार्य अपने शिष्यों के साथ नवदीप मायापुर में आए और वहां नवदीप में धामवासी के रूप में रहे, बल्कि उस समय चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य नहीं हुआ था। ऐसे नहीं कि महाप्रभु आने के बाद वो धाम बन गया नवदीप, नहीं, धाम पहले से ही है, वो जो स्थान है, जब चैतन्य महाप्रभु आए तो वो धाम सारे जगत में प्रकाशित हो गया, अवेलेबल हो गया। तो मध्वाचार्य नवदीप में अपने शिष्यों के साथ रहे तो गौरचंद्र श्री चैतन्य महाप्रभु उनके स्वप्न में आते हैं और मध्वाचार्य को कहते हैं कि हे मध्वाचार्य, तुम मेरे नित्य सेवक हो और जब मैं इस जगत में अवतरित होऊंगा तो आपके संप्रदाय को स्वीकारूंगा, आपके संप्रदाय को स्वीकार करूंगा विशेष रूप से, और मैं ट्रैवल करूंगा और आपके दक्षिण भारत आदि में, और तुम्हारे दो कार्यों को मैं स्वीकार करूंगा। ये क्या है, चैतन्य महाप्रभु ने चारों संप्रदाय से दो दो चीजों को लिया और एक नया सिद्धांत की स्थापना की, उसको कहा जाता है अचिंत्य भेदाभेद तत्व। वैसे भगवान प्रकट होते हैं तो उनको किसी संप्रदाय को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, वो जो करे वो संप्रदाय के कार्य है, है कि नहीं भगवान। तो चैतन्य महाप्रभु ने, क्योंकि शंकराचार्य से पहले बौद्धवाद बहुत अधिक मात्रा में फैला था, उस बुद्धवाद का वाद को रोकने के लिए, क्योंकि बुद्ध ने क्या किया, लोगों का जो विश्वास है शास्त्रों के ऊपर से वो हटा दिया, मतलब वेदों को पढ़ना लिखना चर्चा करना आदि लोगों ने बंद कर दिया, मतलब बुद्ध ने वेदों जो खुले थे वेद उनको बंद कर दिया और स्टोर हाउस में रख दिया, लोग भूल गए वेद आदि। तो भगवान विष्णु शिवजी को आज्ञा देते हैं और उनको शंकराचार्य के रूप में भेजते हैं, एक ब्राह्मण बालक दक्षिण भारत में प्रकट होता है शंकराचार्य, और वो क्या करते हैं, हाँ, जो ढके हुए या बंद किए हुए वेद हैं उनको खोलते हैं, लेकिन वो भी नास्तिकवाद का ही दर्शन है, निराकारवाद, निर्विशेषवाद, अपने आप को भगवान स्वीकार करना या हम भगवान बन जाएंगे, भगवान का कोई रूप आदि नहीं है। तो इस प्रकार से जब शंकराचार्य ने इस सिद्धांत की स्थापना की तो फिर मध्वाचार्य, फिर भगवान के महान भक्त प्रकट हुए मध्वाचार्य, किसके सिद्धांत को हटाने के लिए, शंकराचार्य के। तो ये चार आचार्यों का प्राकट्य हुआ दक्षिण भारत में भगवत भक्ति की स्थापना करने के लिए, विशेष रूप से शंकराचार्य के इस दर्शन को बंद करने के लिए। एक तो मध्वाचार्य, उन्होंने द्वैतवाद या तत्ववाद या भेदवाद कहते इसकी स्थापना की, विष्णु स्वामी ने शुद्धाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद। तो इस प्रकार से ये जो आचार्य है निंबार्कचार्य आदि, इन्होंने इस चीज की स्थापना की, और मध्वाचार्य के जो शिष्य हैं आगे चलकर लक्ष्मीपति तीर्थ, हाँ उनके संप्रदाय में जो आते हैं उनसे ही श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने दीक्षा ग्रहण की थी, और माधवेंद्रपुरी से दीक्षा अद्वैत आचार्य या फिर नित्यानंद प्रभु आदि ने प्राप्त की, ईश्वरपुरी ने, और वो जो संप्रदाय है फिर चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त करके। तो मध्वाचार्य का जीवन बहुत विस्तृत रूप से हमें प्राप्त होता है, उनके जो परंपरा के जो आचार्य गण हैं जिनका नाम है नारायण आचार्य, उन्होंने एक बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में लिखते हैं उस ग्रंथ के बारे में, जिसका नाम है श्री मध्व विजय। मध्व विजय उस ग्रंथ में उन्होंने मध्वाचार्य के लीलाओं का विस्तृत वर्णन किया है। तो ये जो मध्वाचार्य कौन है, मध्वाचार्य वास्तव में वायु के अवतार है, वायु के इनकार्नेशन है, क्योंकि वही वायु देवता पहले हनुमान के रूप में प्रकट हुए थे और वही वायु देवता बाद में भीम के रूप में प्रकट हुए थे, और वही वायुदेव कृष्ण भक्ति की विशेष रूप से स्थापना करने के लिए मध्वाचार्य के रूप में प्रकट हुए थे। तो जब दक्षिण भारत में मायावाद दर्शन बहुत अधिक फैला हुआ था, शंकराचार्य के जो अनुयायी हैं उन्होंने, बल्कि ये वैष्णव संप्रदाय एक प्रकार से लोकती हो गए थे, दिखाई नहीं देते थे कोई वैष्णव सन्यासी वगैरह, इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव होकर भी मायावाद जो केशव भारती हैं उनसे सन्यास लिया। क्या उद्देश्य था, क्योंकि मायावादी सन्यासी का रेपुटेशन समाज में बहुत अधिक था, वैष्णव सन्यासी ना के बराबर थे, एक प्रकार से नए थे, और मायावाद सिद्धांत को लोग स्वीकार करते थे, उनको सम्मान देते थे, उनको प्रणाम आदि करते थे, उनकी वाणी या आदेशों का पालन करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि मेरा जो अवतार है सारे जीवों को कृष्ण प्रेम की बाढ़ में डुबाने के लिए मैं आया हूं, लेकिन मेरी बाढ़ तो आ रही है, लेकिन इन बाढ़ से कई लोग भाग रहे हैं, उसमें है जो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, मायावादी है, धर्मनिष्ठ है, कुतार्किक गण है, पाषाणी है, ऐसे कई लोग चैतन्य महाप्रभु के टच से बाहर भाग रहे थे, उनकी बाढ़ में डूबना नहीं चाह रहे थे। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने सोचा नहीं, मुझे संन्यास ग्रहण करना होगा, क्योंकि संन्यास ग्रहण करूंगा बिना संन्यास के ये लोग मेरे प्रति अनादर कर रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की भावना में एक दिन नवदीप में भावावेश में आकर कृष्ण का स्मरण या विरह में वो क्या चिल्ला रहे थे, गोपी 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 कहते जा रहे थे। अभी कुछ स्टूडेंट्स ने देखा ये क्या है, गोपी गोपी चिल्ला रहा है, कृष्ण कृष्ण बोलना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, ये क्या है गोपी गोपी चिल्ला रहा है। तो उसने कहा ये क्या कर रहे हैं गोपी गोपी चिल्ला रहे हो। तो निमाई पंडित जग गए, उन्होंने कहा, उन्होंने डंडा उठाया, चिल्लाते हुए निमाई पंडित उसको मारने के लिए चैतन्य महाप्रभु भागे उस स्टूडेंट को, और उस स्टूडेंट्स फिर नवदीप के बाकी जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी थी उनके बीच में गया, उन्होंने कहा कि ये जो निमाई पंडित है वो अपने आप को समझता क्या है, एक ब्राह्मण के ऊपर हाथ उठाता है। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, उसको हम ये सिखाएंगे, पाठ पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने देखा ये पढ़े लिखे स्टूडेंट्स मेरे प्रति अपराध कर रहे हैं, तो इनका जीवन निश्चित रूप से नरकगामी होगा। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि मुझे क्या करना होगा इनके उद्धार के लिए, संन्यास ग्रहण करना होगा, क्योंकि सन्यासी को लोग स्वाभाविक रूप से आदर देते हैं, सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं। महाप्रभु ने कहा ये मुझे प्रणाम ये कर ले तो भी इनका भव बंधन नष्ट हो सकता है, इतना पावर है एक प्रणाम जो हम भगवान सन्यासी को अर्पित करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु तो सन्यासी से बढ़कर तो साक्षात भगवान है, लेकिन सन्यास का उन्होंने ऊपरी वस्त्र धारण किया है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण किया था मायावाद संप्रदाय के जो एक आचार्य है केशव कश्मीरी से कटवा में, ताकि लोग सरल रूप से उनको स्वीकार करें, मतलब चीटिंग चीटिंग करने के लिए, एक प्रकार से धोखा देने के लिए। हाँ, वो धोखा में क्या है, उनका लाभ है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने यह किया था। तो जो ये मध्वाचार्य है, दक्षिण भारत में कर्नाटक में पजाता क्षेत्र एक नाम का स्थान है, वहां एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था मध्यगेह भट्ट, जो उडुपी के पास है। और ये जो मध्यगेह भट्ट हर रोज उडुपी में अनंतेश्वर महादेव का जो मंदिर है, उनका गांव 12 किलोमीटर दूर है। मैं 2009 में गया था उस विलेज में भक्तों के साथ। तो वो उस विलेज बहुत ही सुंदर है, पहाड़ी के पास पजाता क्षेत्र। और अभी भी मध्वाचार्य का वो घर और उनकी लीला में जो यूज हुई, जो पत्थर और जो जो चीजें हैं वहां है। और अनंतेश्वर महादेव का मंदिर है वहां। तो ये जो मध्य के बट्ट है, रोज अनंतेश्वर महादेव का पूजा करने के लिए जाते थे। ये शिवाली ब्राह्मण फैमिली से थे। ब्राह्मण होने के बावजूद भी वो शिवजी का पूजा करते थे, जानते थे हाँ शिवजी विष्णु के भक्त हैं, इस कारण से उनको प्रणाम करते थे। तो जो अनंतेश्वर महादेव हैं, वो परशुराम को रिप्रेजेंट करते हैं वहां उडुपी में। तो जब उस समय देखा, स्वर्ग आदि उच्च लोकों में देवतागण परेशान थे। किस चीज के लिए परेशान थे? कि पृथ्वी में बुद्धिस्ट और मायावाद का बहुत अधिक प्रचार हो रहा है, इनके सिद्धांत बहुत अधिक प्रबल हो रहे हैं। तो फिर सारे देवता ब्रह्मा के साथ मिलते हैं और मिलकर सोचते कि कैसे भगवत भक्ति की पुनर्स्थापना की जाए, कैसे भगवत भक्ति फिर से पृथ्वी में बढ़ जाए। तो वो सारे ब्रह्मा के पास जाते हैं। ब्रह्मा कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हम विष्णु जी के पास चलते हैं। और विष्णु के पास जाते हैं, बल्कि ब्रह्मा ने सोचा, अरे मेरे संप्रदाय का क्या होगा? ब्रह्मा जी खुद चिंता कर रहे थे अपने संप्रदाय के बारे में। तो सबको लेकर विष्णु के पास जाते हैं और उन्होंने कहा कि ये जो मेरी संप्रदाय है, मेरा संप्रदाय है, उसकी जो गुरु परंपरा है वो कंटिन्यू बनी रहनी चाहिए। अभी तो ये शंकराचार्य और बौद्ध का तत्व के कारण ये जो मेरा संप्रदाय है और वैष्णव संप्रदाय है वो लुप्त हो रहे हैं। तो भगवान विष्णु को ये रिक्वेस्ट करते हैं। तो भगवान अपने आंखों को बंद करते हुए हैं, देवताएं बहुत सारे वहां बैठे थे, तो उनमें से कहते, वायु, ओ वायु देवता, आप क्या करो, जाओ और मध्वा मध्व के रूप में, मध्वाचार्य के रूप में जाओ और वहां इस चीज की स्थापना करो कि मेरा पर्सनल फॉर्म है, मेरा स्वरूप है, मैं निराकार आदि नहीं हूं, और शुद्ध भक्ति की स्थापना करो जो मेरे भक्त चाहते हैं। और ये जो मायावाद आदि जो गलत सिद्धांत हैं, इनकी व्याख्या करके इनको काटो। तो वायु ने इस चीज को स्वीकारा और वायु देवता आगे चलकर मध्वाचार्य के रूप में प्रकट होते हैं। उसी समय जब इनका कन्वर्सेशन ओपन हो रहा था, तो बाद में उडुपी में मकर संक्रांति के दिन हजारों लोग अनंतेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए आते थे। तो एक व्यक्ति, साउथ में आप गए होंगे तो वहां आप देखेंगे दक्षिण भारत के मंदिरों के सामने एक गरुड़ स्तंभ होता है, पिलर होते हैं बड़े बड़े, गोल्डन पिलर वगैरह जैसे ना, गोपुरम जो मेन गेट होता है इसको गोपुरम कहते हैं, उसके नीचे से आप जाते हो, बड़े बड़े देखा ना साउथ के बहुत ऊंचे गेट्स होते हैं, उसको गोपुरम कहते हैं। क्यों गोपुरम होते हैं? क्योंकि कोई व्यक्ति इन गोपुरम ये मेन गेट के नीचे से गुजरता है, तो वो जो गोपुरम का इतना प्रभाव है कि भगवान का दर्शन करने के लिए अपनी चेतना को वो सुस्थिर करते हैं अपने आप। तो इसलिए आप श्रीरंगम में जाते हो तो वहां 7 गोपुरम्स हैं, 7 गोपुरम हैं, उनको पार करके आप श्रीरंगम का दर्शन, रंगनाथ का दर्शन करने के लिए अंदर घुसते हो। तो ये अनंतेश्वर महादेव के मंदिर के सामने ही वो पिलर था। तो उस पिलर के ऊपर एक व्यक्ति चढ़ता है जो पागल की तरह चिल्ला रहा था, नाच रहा था। सबने उस व्यक्ति को देखा
और वो क्या कहने लगा, उन्होंने कहा कि जल्द ही वायु देवता हाँ प्रकट होने वाले हैं उडुपी में और मायावाद का खंडन करेंगे और भगवत रूप की स्थापना करते हुए शुद्ध भक्ति का प्रचार करेंगे और वो 6 ऐश्वर्य से युक्त होंगे। तो ये बोलकर वो पागल व्यक्ति इतनी ऊंचाई से सारे हजारों लोग देख रहे हैं उतर के भीड़ में वो गायब हो जाता है, अप्रकट हो जाता है। तो उसी समय ये जो मध्य के भट्ट है उनका विवाह हुआ था, जिनका गांव उडुपी से 12 किलोमीटर दूर था, उनकी पत्नी का नाम वेदवती था। ये दोनों बहुत अच्छे कृष्ण भक्त थे। अरे जो मध्यगेय भट्ट है वो हमेशा लालायित रहते थे कृष्ण कथा करने के लिए और कृष्ण कथा श्रवण के लिए। तो इन्होंने देखा विवाह के बाद इनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है और वो सोचते थे कि हमें ऐसा भक्त पुत्र चाहिए। देखा कि संतान प्राप्त होना बड़ा कठिन है, उन्होंने सोचा कि ऐसा पुत्र चाहिए जिसका जो रजो और तमो गुण से क्या हो, रहित हो टोटली। तो इन दोनों ने क्या किया, उनके घर में नारायण विग्रह थे, उनकी पूजा की और उन्होंने एक व्रत करना शुरू किया, जिस व्रत का वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है पयो व्रत। आदित्य ने शुरू किया था ना, आदित्य और कश्यप, इन दोनों ने कश्यप के द्वारा दीति ने किया था, आदित्य ने किया पयो व्रत, नहीं दीति ने भी किया था वामन देव के प्राप्ति के लिए। आदित्य ने तो आदित्य के द्वारा इंद्र ने उन बच्चों को मारा जिनके गर्भ से प्रकट हुए थे, दोनों ने व्रत किया था, आदित्य ने भी और दीति ने भी। दीति ने जब व्रत किया, आदित्य ने जब व्रत किया तो उनको वामन देव प्राप्त हुए और फिर इसने भी एक व्रत किया था दीति ने, जिनसे वो कितने 49 के मरुत 49 मरुद प्रकट हुए थे। तो वामन देव इनको प्राप्त हुए थे कश्यप और आदित्य को इस पयव्रत के द्वारा। तो इन दोनों ने भी कहा हमें भी ऐसा पुत्र चाहिए। इवन आज भी संतान प्राप्ति करने के लिए शास्त्र कहते हैं इस पयव्रत का पालन करना चाहिए। पयव्रत का पालन करने से महान भक्त संतान की प्राप्ति होती है। तो ये जो मध्य गृह भट्ट और इन्होंने 12 साल तक बिना लालच से इस व्रत को धारण किया और सदैव कृष्ण नाम कृष्ण सेवा में अपने आप को लगाया और फिर उन्होंने गर्भाधान संस्कार आदि जो संस्कार है वो किए और फिर देखा कि एक बालक का जन्म होता है और वो बालक कौन थे, फाइनली मध्वाचार्य, जिनका बचपन का नाम वासुदेव था। और जैसे उन्होंने जन्म ग्रहण किया तो उनके जात कर्म संस्कार किए गए और ज्योतिषी ब्राह्मण आदि को बुलाया गया, पंचभव्य पंचामृत से उनको स्नान कराया गया। जब बच्चे को बचपन में सोने के चम्मच में घी आदि देते हैं तो उनका हेल्थ हमेशा अच्छा रहता है। और भक्ति में वृद्धि कराने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए, बचपन में ही तुलसी का स्पर्श करना चाहिए उसकी जीवा पर, और जैसे तुलसी स्पर्श होती है तो उसके अंदर भक्ति जागृत होने लगती है, इनवोकिंग डिवोशन तुलसी के स्पर्श मात्र से। तो इस प्रकार से ये सारे जो जात कर्म संस्कार कई सारे संस्कार हुए हैं और फिर एक जो ब्राह्मण आया उन्होंने कहा कि ये सर्वसामान्य बच्चा नहीं है, ये तो साकारवाद की स्थापना करेगा, ये वायु का अवतार है और इसने पहले भी भीम के रूप में आया था, हनुमान के रूप में आया था और अभी एक आचार्य की भूमिका निभाएगा, महान आचार्य होगा। तो फिर मध्य के भट्ट ने भगवत पूजा आदि करके फाइनली अपने बच्चे का मुख देखा और सब जगह लोगों को दान आदि प्रदान किया। तो इन्होंने सोचा कि अनंतेश्वर महादेव, अनंतेश्वर के द्वारा हमें पुत्र प्राप्ति हुई है, 12 किलोमीटर दूर वो टेम्पल था उडुपी में, उन्होंने लगा जरूर एक बार बच्चे को मंदिर ले जाना चाहिए, भगवान के सामने रखना चाहिए, उनकी कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। तो फिर ये वो लेके गए, जंगल का रास्ता था। और आज भी आप जाते हैं नदियों से होते हुए, जंगल पहाड़ों से होते हुए उनका जो गांव है पजा का क्षेत्र, वहां व्यक्ति पहुंचता है तो दूर बहुत सिक्योरिटी गार्ड्स को लेके चल रहे थे, दो आगे चलते थे, चार पीछे, पति पत्नी बच्चे को लेकर जा रहे थे। वहां दर्शन आदि करा के जब वापस आए तो देखा कि रास्ते में जंगल में उनके साथ जो रक्षक थे वो उल्टियां कर रहे थे, रक्त की उल्टियां हो रही थी। तो इनके समझ में आ गया कि ये सब भूत का प्रभाव है, भूत पिशाच जंगल में हमें पकड़ लिया है मध्य रात्रि के समय। तो ये जो मध्य के बट्टा है अपने पुत्र को पकड़ के नरसिंह मंत्र और कई मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, कमंडल से पानी छिड़का रहे थे, लेकिन देखा कि किसी भी प्रकार से उस भूत का प्रभाव कम नहीं हो रहा था। तो फिर वो जो भूत है वो बोलने लगता है कि मैं बहुत पापी व्यक्ति हूँ, पापी व्यक्ति था, और मेरा उद्धार केवल हो सकता है तो ये जो बालक है इसका चरण धूलि मुझे प्राप्त हो जाए, चरण धूलि का स्पर्श मुझे हो जाए तो उसके द्वारा मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो वो भूत एक रूप में आया, तो इन्होंने उस बच्चे के जो चरण है उसके सर में रखे और वो मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य बचपन से ही इतनी शक्तिशाली चीजों को प्रकट कर रहे थे अपने ऐश्वर्य को। और ये आकर सारे लोग चर्चा करने लगे और ये बहुत जल्दी बड़े हुए, नॉर्मल बच्चे तो बड़े धीरे धीरे बड़े होते हैं, ये इनका विशेषता है। हनुमान भेम ये सर्व सामान्य थोड़े थे, हनुमान को वृकोदरा कहा गया है भगवद गीता में, मतलब खाने में एक्सपर्ट है, उनके फायर आग इतनी तेज चलती रहती है। तो फिर ये इतने जल्दी बड़े हो गए कि हर आधे घंटे में माँ का स्तनपान करते थे, इतना भूख लगता था। एक दिन उनकी माँ वेदवती जब बाहर गई तो उस समय उनकी बड़ी जो सिस्टर है वो घर में थी। अभी ये बच्चा छोटा ही था, इसको इतनी भूख लगी, चिल्लाने लगा, रोने लगा। अभी तक उसका अन्न प्राशन संस्कार नहीं हुआ था। अन्न प्राशन संस्कार का अर्थ है पहली बार बच्चे को अन्न खिलाया जाता है वैष्णव के द्वारा। तो फिर इनका अन्न प्राशन संस्कार हुआ नहीं था, केवल माँ का दूध पिया करते थे, लेकिन अभी माँ तो चली गई थी, बहुत भूख लगी थी, उनकी बहन थी वहां और उन्होंने कहा माँ आएगी तो आपको केला खिलाएंगे और दूध पिलाएंगे। तो उन्होंने फिर भी ये बच्चा रोते जा रहा था, वेट करते रहे, खेलते रहे, फिर भी रो रहा है। फिर देखा इसने क्या किया, जो गाय गाय के लिए जो फूड होता है, पता है ना गांव में खिलाने के लिए, वो फूड की बोरी वहां भरी हुई थी, हाँ उसके आसपास इसको खेलने के लिए छोड़ा। और उस बच्चे ने क्या किया, पूरे बोरी को खा लिया, हाँ पूरा बोरी खत्म कर दिया। बल्कि वो जिन्होंने बायोग्राफी वर्णन किया है उनके, जब ये बायोग्राफी उन्होंने लिखा है जब मध्वाचार्य अस्तित्व में थे और वो वैष्णव छोटे से थे, उन्होंने ये सारे चरित्र लिखा। उन्होंने कहा कि उस बालक ने पूरी बोरी को खा लिया, उसके अंदर जो भी था, और कैसे खाया, मुंह सर अपना डाल के अंदर संतुष्ट हो गया। बल्कि वो वर्णन करते हैं कि एक हट्टा कट्टा बैल भी एक समय में नहीं खा सकता, इतने पावरफुल थे। ये उनका अन्न प्राशन सेरेमनी था, पहला अन्न प्राशन सेरेमनी। तो ये सब लोग माता पिता आए, देखा कि बच्चे ने तो, जैसे बच्चे मिट्टी खाते हैं, हाँ बच्चे ने तो पूरा गाय का जो बोरी है भोजन वो इन्होंने खा लिया। तो ये धन्वंतरी से प्रार्थना करने लगे, हाँ कि इनका हेल्थ ठीक रहे, डाइजेशन ठीक हो जाए, स्तुतियां करने लगे। तो बचपन से ही ये जो मध्वाचार्य हैं जिनका नाम वासुदेव है, कई सारी लीलाएं की। एक बार वो घर से बाहर निकल पड़े, प्रभुपाद इन सब लीलाओं का वर्णन चैतन्य चरितमृत के तात्पर्य में लिखते हैं जो हम वर्णन कर रहे हैं। सारी छोटी छोटी ब्रेक में प्रभुपाद ने एक बहुत लंबे तात्पर्य लिखा है मध्वाचार्य की लीलाओं पर। तो फिर एक दिन ये जो बालक है ये बाहर निकल पड़ा और उन्होंने एक बैल की पूंछ पकड़ ली, बड़ा बैल, लोग डरते थे, वो सबसे भयानक बैल था, उसकी पूंछ पकड़ी और पूरा दिन घूमते रह गया और लोग ढूंढ रहे, माता पिता ढूंढ रहे कहाँ है। तो फाइनली शाम इवनिंग के समय देखा, लोगों ने कहा कि हमने देखा है वो उस डेंजर बैल के पीछे पूंछ पकड़ के घूम रहा था पूरे प्रजा का क्षेत्र में। तो इस प्रकार से कई सारे उनके कार्यकलाप थे और जिनका वर्णन बहुत विशद किया जा सकता है, लेकिन मैं वैसे ही कुछ एक दो लीलाओं का वर्णन करता हूँ। तो ऐसे मध्वाचार्य ने 11-12 साल में संन्यास ग्रहण किया। बचपन से ही कहा कि मुझे, उनके थोड़े से बड़े हो गए तो माता पिता ने सोचा कि इनका विवाह करेंगे, तो विवाह के लिए कोई ये इंटरेस्टेड नहीं थे। उन्होंने कहा मैं तो बना हूं प्रचार करने के लिए, प्रचार करना है मुझे कृष्ण भावना का, इसके अलावा मैं कोई और कार्य नहीं करूंगा। और इन्होंने अपने माता पिता को कहा कि मैं तो संन्यास ग्रहण करूंगा। तो ये माता पिता, छोटा सा बच्चा 10 साल का, कहता है संन्यास ग्रहण करूंगा। माता पिता उसके चरणों में गिरने लगे, नहीं नहीं बेटा ऐसे मत करो, आपके अलावा हमारा रक्षक कौन है। उन्होंने कहा सीनियर लोग जूनियर के आगे ऐसे झुकते नहीं जब तक जूनियर संन्यास नहीं लेता। सन्यासी के आगे चाहे सीनियर हो कोई भी हो, सारे जूनियर है। तो कहते अभी नहीं, मैं संन्यास लूंगा नाता हूं, आप मेरे आगे झुकिए। तो फिर भी ये इनसे रहा नहीं गया और ये चल पड़े ढूंढने लगे कौन वैष्णव है जिनके पास जाकर मैं संन्यास ग्रहण करूंगा। तो उनको अच्युत प्रेक्षक, अच्युत प्रेक्षक का मतलब है जो अच्युत जो भगवान है उनका ज्ञान रखते हैं, उनके पास जाकर उन्होंने अप्रोच किया। गुड़ुपी में वही एक वैष्णव सन्यासी थे, वो भी बहुत छुपे हुए थे, उनको समझना ढूंढना बड़ा कठिन था। तो ऐसे मध्वाचार्य जो 12 साल या 10 साल की आयु थी वो निकल पड़े और उस अच्युत प्रेक्षक को उन्होंने प्रार्थना की और कहा कि आप मुझे दीक्षित कीजिए, संन्यास दीजिए। और वो, क्योंकि वो जो अच्युत प्रेक्षक थे उनको उनके गुरु ने आदेश दिया था कि जो ये शंकराचार्य का सिद्धांत है इसको आप क्या करो, हटा दो, इस सिद्धांत को परास्त कर दो और वैष्णव सिद्धांत की स्थापना करो। लेकिन वो देख रहे थे कि मैं तो कम कुवत हूं। लेकिन एक दिन अच्युत प्रेक्षक के सपने में भगवान आके कहते हैं कि तुम्हारे पास एक ऐसा महान भक्त आएगा जो गुरु ने तुम्हें आज्ञा दी है वो तुम्हारा शिष्य उस आज्ञा को कंप्लीट करेगा। तो फिर ये मध्वाचार्य वासुदेव आता है, उनको अप्रोच करता है और फिर आगे चलकर वो संन्यास ग्रहण करते। जब संन्यास लेने वाले थे तो सन्यासी को कोपिन पहनना पड़ता है, सारे वस्त्र ने एक ही कपड़ा है ना, बाकी वस्त्रों का त्याग करके। तो ये कोपिन बनाए रहे थे, अपने कपड़े को काट ही रहे थे। उनके पिताजी आए, कहा नहीं नहीं नहीं, आपके अलावा हमारा कोई आश्रय नहीं है, माता पिता की सेवा ही सर्वोत्कृष्ट है, आप हमारे रक्षक हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब तक तुम्हारा दूसरा रक्षक नहीं जन्म लेता ना तब तक मैं संन्यास नहीं ग्रहण करूंगा। तो एक साल में उनको दूसरा पुत्र की प्राप्ति हुई और फिर इन्होंने संन्यास ग्रहण किया, मन वाणी और शरीर से भगवत सेवा में लगे। तब से उनका नाम पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ पड़ा, पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ। और इतने स्कॉलर थे, आगे चलकर उन्होंने व्यासदेव को जाकर मिले, कहा शम्याप्रास जो बद्रीनाथ से भी ऊपर है, व्यासदेव ने कहा उत्तर बद्री में वो गए, व्यासदेव से मिले। व्यासदेव ने उनकी भगवत गीता की जो टीका है उसको देखी और आगे चलकर व्यासदेव ने उनको कहा कि आप महाभारत की टीका भी लिखो। तो महाभारत के ऊपर भी उन्होंने टीका लिखी है और उनका एक फेमस उपनिषद था तैतरीय उपनिषद से बहुत अधिक प्रीति रखते थे 160 उपनिषदों में, क्योंकि उसमें भगवान की बहुत अधिक महिमा का वर्णन है तैतरीय उपनिषद में। तो ऐसे मध्वाचार्य ने पूरे भारत में भ्रमण किया, हर स्टेट में गए भारत के, और हर स्टेट में उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया उनके संपर्क में। और उनकी वो ऑलराउंडर थे, ऑलराउंडर का मतलब है प्रचार के लिए जो भी आवश्यक है वो उन्होंने इस्तेमाल किया। भक्त बना हुक एंड क्रुक, हम कहते ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो हुक एंड क्रुक, जैसा मर्जी, लेकिन किताब जानी चाहिए गोडाउन से बाहर दूसरों के पास। तो वैसे ही मध्वाचार्य ने लोगों को भक्त बनाया हुक एंड क्रुक, जैसे मर्जी। एक तो कभी वो विद्वत्ता से वो तैयार रहते थे कोई उनके साथ डिबेट करे, और क्योंकि वो इतने बलशाली थे एक साथ वो हजार केले खाते थे। जब किसी जैसे वर्णन आता है वो जब गोवा में गए तो किसी गृहस्थ ने उनको इनवाइट किया, जहां 200 लीटर दूध और 2000 केले लंबे वाले केले, उसका बहुत कई जगह उनके फिस्ट का वर्णन आता है। मध्वाचार्य बैठते थे और पूरा प्रसाद को ग्रहण करते थे। कभी कभी जो गरीब गृहस्थ है जिनके पास इतना सुविधा नहीं है, इनके जाने मात्र से प्रसाद बढ़ जाता था अपने आप, फिर उसको स्वीकार करते थे। तो ऐसे मध्वाचार्य को विग्रह प्राप्त होते हैं उडुपी कृष्ण कौन से, एक बार द्वारका में भगवान कृष्ण को कृष्ण के साथ देव की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि ये जो यशोदा है वो बहुत भाग्यशाली है, उनके आपने सारी बाल लीलाओं का दर्शन किया है और आपके साथ आदान प्रदान किया है, मुझे तो आपकी बाल लीलाओं का देखने को नहीं मिला या आपके साथ आदान प्रदान करने का मौका नहीं मिला, तो आप मुझे वो बाल रूप दिखाइए जो यशोदा माता ने आपकी सेवा की है। तो द्वारका में भगवान ने देवकी को अपना वो बाल रूप दिखाया, जो छोटे से बालक थे बंसी वगैरह हाथ में है, तो उस रूप को देख के देवकी बहुत आकृष्ट हुई और वो देख दिखा रहे थे देवकी को, लेकिन दूसरे जगह से रुक्मिणी ने भी वो रूप देखा। जैसे देखा तो रुक्मिणी ने आगे चलकर भगवान को कहा कि जो रूप आपने देवकी को दिखाया वो उस रूप की मैं पूजा करना चाहती हूँ। तो विश्वकर्मा को बुलाकर विग्रह बनाए गए छोटे से, उसकी रुक्मिणी पूजा करते थे। और जो द्वारका जला जलमग्न हो गई समंदर के द्वारा, तो वो विग्रह भी वहां गोपी तालाब है ना, वहां एक प्लेस है गोपी तालाब जहां से गोपी चंदन निकलता, गोपी तालाब में डाली गई, चला गया वो वगैरह मिट्टी के अंदर। फिर ये जो मध्वाचार्य हैं उडुपी में भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे थे, भगवत स्तुति कर रहे थे शाम के समय में समंदर के किनारे भावावेश में, तो उस समय उन्होंने देखा कि दूर से एक नाव आ रही है और वो नाव सहायता मांग रही है, तो इन्होंने उस नाव को सहायता प्रदान की, अपना उत्तरिया निकाला और उसको ऐसे घुमा घुमा के बताया कि यहाँ प्रॉपर स्थान है जहां नाव को आप लैंड कर सकते हो, नहीं तो वो नाव डूबने वाली थी, तो वो सही रूप से वो नाव पहुंचती है। वहां के जो लोग हैं नाव वाले, बड़ी नाव थी, तो वो उनको कहने लगे कि आप, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, आप उस सेवा लीजिए हमसे। उन्होंने कहा आप कहाँ से आए हो, उन्होंने कहा हम द्वारका से आए हैं, तो जरूर आपने गोपी चंदन लाया होगा, हमें गोपी चंदन होगा तो दे दो। तो इतना बड़ा ढेला था, एक दो ढेले, उन्होंने कहा सारा रख लो। तो मध्वाचार्य के अंदर इतना बल था कि उस ढेले को उन्होंने उठाया और उन्होंने द्वादश 12 श्लोकों का उच्चारण करते हुए निकल रहे थे उस टाउन में समंदर के किनारे से, निकलते निकलते बीच में एक जगह रखा तो टूटा, तो उसमें से बलराम के विग्रह निकले, तो आज भी वो बलराम के विग्रह समंदर के किनारे एक टेम्पल है उसमें है, मालपे बीच, अभी वो फेमस प्लेस है मालपे बीच के इधर ही। और फिर दूसरा उस टेले ढेला जो था गोपी चंदन का, उसको लेकर वो आगे बढ़ते गए और फिर आगे जब उन्होंने रखा तो उसमें से कृष्ण के विग्रह निकले, जिसकी पूजा कौन कर रहे थे, रुक्मिणी। तो वो उडुपी कृष्ण के रूप में बहुत अधिक फेमस हुए। आज भी आप कर्नाटक में उडुपी में जाते हो तो उस विग्रह का दर्शन कर सकते हो। चैतन्य महाप्रभु ने मध्वाचार्य के संप्रदाय से दो चीजें ली थी, एक था विग्रह की सेवा और दूसरा था मायावाद का खंडन, इसलिए प्रभुपाद ने दो चीजों को याद रखा है, विग्रह की सेवा उनके मंदिरों में और दूसरा निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारे। जिस प्रकार से मध्वाचार्य का जीवन में कई चीजें आती हैं, उनका तिरोभाव है, तो मध्वाचार्य अपने आखिरी समय में अपने भक्तों के संग में अनंतेश्वर महा अनंतेश्वर के मंदिर में प्रवचन कर रहे थे। भगवान की स्तुति कर रहे थे और स्तुति करते हुए वो थोड़ा शांत हो जाते हैं, सारे भक्त कीर्तन में मग्न थे। उसी समय है देवतागण उनका गुणगान कर रहे थे और बहुत सारे पुष्प गिरने लगे मध्वाचार्य के ऊपर। इतने पुष्प गिरे कि मध्वाचार्य पूरे ढक गए, ढक गए। तो जो शिष्यगण हजारों थे वो गए निकालने पुष्पों को, देखा कि मध्वाचार्य क्या हो गए हैं, अप्रकट हो गए हैं। तो इस प्रकार से उनका तिरोभाव हुआ था मध्वाचार्य का। तो ऐसे मध्वाचार्य हमारे संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं और उनका तिरोभाव तिथि है। तो मध्वाचार्य को हम प्रार्थना कर सकते हैं। वो कहते कि अधिक से अधिक वो वात्सल्य भाव में रहा करते थे भगवत सेवा में। तो ऐसे मध्वाचार्य की कृपा की हमें आवश्यकता है ताकि हम श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का पालन करते हुए श्रील प्रभुपाद की सेवा में सदैव नियुक्त रहे, हरि नाम का उच्चारण करते हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीपाद मध्वाचार्य तिरुभाव।